रमन कृते प्रेषिता अनेक भोज्यान सखनिज देश शेषासन मुदित हृदम तां च तं च ब्रजेन्दुं सुसर्स्नातं रम्यवेशं गृहमनुजननी लालितं प्राप्तगोष्ठं निर्व्यूढं अजस् आलिदोहं स्वगृहं अनु पुनः भुक्तवन्तं स्मरामि। अब सायंकाल की लीला का वर्णन करते हैं। इन भावों के साथ में इस अधिकार में आने पर भक्त लोग उसी रूप में उनका भजन करते हैं, उसका ये बदला है। अष्ट जाम में से संध्या का राधिका श्री राधिका सायंकाल सायं का समय हो गया। अपराह्न काल में कृष्ण गौओं को लेकर के लौट गए हैं गोष्ठ से, जहाँ पर चराने की भूमि है वहाँ से वो लौट रहे हैं अपने घर की तरफ में गोकुल। उस समय राधिका जी, अब वहाँ पर हमने कहाँ पर समाप्त किया था, पहले सूर्य कुंड में समाप्त किया था, वो सूर्य पूजा अपराह्न में। इसके बाद में गाय लौट आई। अब कृष्ण लौटा करके गायों को लेकर के आ रहे हैं और उस समय में सायंकाल में श्रीमती जी उनसे पहले आकर के कृष्ण के भोजन के लिए तरह तरह की सामग्रियों को बनाया। कैसे बनाया? यशोदा जी की आज्ञा से और सखी के माध्यम से। रति मंजरी भी हो सकती है, रूप मंजरी भी हो सकती है, किसी को भी भेजा। वो सखी हस्ते विविध मिष्टान तरह तरह के मनोहर लड्डू इत्यादि मिष्टानों को भेजा है। कृष्ण भुक्त शेष ज्ञान, कृष्ण ने प्रसाद पाया, यशोदा जी ने धनिष्ठा के हाथों में दिया और धनिष्ठा ने चतुराई से कृष्ण का जो बचा हुआ जो अवशेष भोजन था महाप्रसाद के रूप में उसमें मिला दिया। यशोदा जी ने जूठा नहीं दिया, यशोदा जी ने जो बचे हुए थे अलग से उसको दिया, किंतु उन्होंने चतुराई से उसमें मिला करके उसमें ले आए। सखी दिल निज सुख मानी, सखी ने राधा जी को दिया और उसको पाकर के राधा जी प्रसन्न होकर के ललिता जी को देकर के सबको विवाह कराया, अपने भी उन्होंने ग्रहण किया। ये सायं तक की राधिका जी की। इधर में कृष्ण क्या करते हैं, कृष्ण गोचारण करते हुए जब ब्रज में आए, उनके जितने पशु पक्षी थे वो जहाँ पर गांव मिलता है वन से वहाँ आकर के रुक गए, सुखसारी हिरणे सब। और कृष्ण गायों को लेकर के भीतर में प्रवेश, जिनकी जिनकी गायें हैं अपने घरों में अपने आप जाने लगे। यशोदा जी गांव के बाहर में खड़ी हैं और कृष्ण को देखते ही जितनी माताएं हैं उनके स्तन से झरने लगे दूध और कृष्ण को पकड़ लिया। जितनी माताएं हैं एक साथ में लाखों माताएं, ये कैसे संभव हुआ? कृष्ण की योग माया शक्ति ने इसको खोल, सभी देखने के लिए उत्कंठित है इसलिए सभी ने कृष्ण को और उनको छाड़ने लगी। लाल पांव कर जो सुधा मैया अपने डिस्टर्ब किसी को नहीं किया, जब सब उन लोगों का लाल पालन हो गया तो अंत में जो सुधा जी कृष्ण से मिली और तब वो अपने बच्चों से मिलने लगी और इधर जो सुधा जी ने कृष्ण को लाल त्याग करके उनकी आरती उतार, संध्या की आरती उसी का ही संध्या में। इसी तरह से यशोदा जी कृष्ण को देखते हैं कि ये वन जंगल से आया, कहीं खरोंच तो नहीं आई, कहीं चोट तो नहीं पहुंची, बच्चों से लड़ने में भिड़ने में जंगल में इधर उधर जाने से कांट फूस में जाने से पैर में कांटे गड़ न गए, इस तरह से पैर से लेकर के और सिर तक सभी अंगों को, किसी को मुख को 7 बार, किसी को 3 बार, किसी को 2 बार, किसी को 1 बार, 4 बार, इस तरह से सर्वांग को अवर 7 बार, इस तरह से 14 बार लेकर के इसमें ये जो धूप है, पहले तो धूप दिया जाए, तब भी धूप को दे करके अब फिर सबको नहीं देना है, इनमें से केवल दीप को ठाकुर जी को दे करके देवता इत्यादि मनुष्य सब लोग दर्शन करने के लिए आते हैं, उनके लिए ही ये प्रतीक दिखलाया जाए, वहीं से दिखलाया जाए और सब लोग वहीं से आते हैं। यदि बड़ी भीड़ हो ना, प्रतीक को नहीं निकालना चाहिए, बस वहीं से दिखला दिया, सभी लोग वहीं से ऐसे ऐसे ले रहे हैं। बड़े बड़े मंदिरों में ऐसे ही यहाँ हम लोग करते हैं ना, इसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ होती हैं। एक तो इसमें होता है कि पहले किसको दें, चिंता करता है, पहले नीचे का प्रश्न नहीं है, जो आए सामने से सबको एक बराबर, हवा पहले ये नहीं देखती कि किसके यहाँ हम पहले पहुँचे, इसलिए ऐसा नहीं, इसमें जूठा का भी प्रश्न नहीं है। हाँ, गुरु के लिए सम्मान पूछा, इसके बाद में सबको सम्मान रूप से दे, बस वही एक आरती दिखलाई जाएगी सबको, इसके बाद में ऐसा नहीं जो कमल का जब फूल लिया और फूल से उनको ये किया, वो फूल भी सबको दे, चमर इधर में दिया तो चमर भी देने लगे सब, पंखा दे रहे हैं तो पंखा भी दे, ऐसा मत करना सब। बहुत से मंदिरों में देखा है हमने, विशेष करके इस्कॉन के मंदिरों में, वो नहीं जानते हैं बेचारे, इसलिए वो लोग क्षमा के पास रहे बस, तो तुम लोग देख सुन कर बस प्रदीप ही केवल दिया जाएगा। तो इस तरह से जसोदा माँ उनको आरती उतार करके घर में ले गई और स्नान रम्य वेश धरी, कृष्ण ने स्नान किया, रम्य वेश धारण किया। कहीं कहीं तो मिलता है जो कृष्ण स्नान करने के लिए चले जाते हैं कौन कौन पावन सरोवर, और वहीं पर राधा जी का एक कुंज है, उसमें वो पहुंच जाती है, वहीं से उनका स्नान करते समय दर्शन करती हैं, या सब शक्तियां वहां से दर्शन करती हैं। अब इसके बाद में जसोदा ललित हरि सखा सह गोदोहन करें, शाम को गोदोहन करते हैं नाना विधि, और दोहन करके घर में आते हैं, और नाना प्रकार के पकवान जो जसोदा जी को भेजा गया है, राधा जी ने भेजा, अपने रोहिणी जी ने बनाया है, वो सबको कृष्ण को देती हैं, सब सखाओं को साथ में देती हैं, और सभी लोग मिलकर के उस प्रसाद को अन्न को ग्रहण करते हैं। ऐसे कृष्ण जो हर ये करते हैं, और राधा जी ऐसी जो सेवाएं करती हैं, उन दोनों को संध्या के समय में हम लोग स्मरण और प्रणाम करते हैं। वंशा कल्पतरु
पितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
साधक लोग क्रमश साधन भजन कर वैष्णव की कृपा से गुरु पदाश्रय करें, और गुरु पदाश्रय करने के बाद में सर्वस्वम गुरु सब जाती है, सब कुछ गुरु के चरणों में सब कुछ दे देंगे, मैंने क्या है, अपनी स्वतंत्रता संपूर्ण रूप से उनको दे दी, ये तात्पर्य। अब अपने को स्वतंत्र ना समझे, यदि ऐसा हो गया तो वो भजन राज्य में कुछ बढ़े, अन्यथा भजन राज्य में नहीं बढ़ सकता, इसलिए गुरुवे सर्वस्वम
सर्वम गुरुवे
अब अपनी स्वतंत्रता मत रखो, ये मेरी स्वतंत्रता है, मैं ये करूँगा वो करूँगा, बने गुरु जैसा कहते हैं, तुम्हारी इच्छाएं मोर इच्छाएं मिशाई, अब भगवत विनोद आपने भूली, अपने को भी भूल जाओ, जब तक ये स्वतंत्रता की वृत्ति रहेगी तब भाई साधन भजन हमारा वो नहीं होगी, और ये सब तो भक्ति की बात ही है। इसके बाद में दे करके विषम में न गुरु सेवा, विषम रूप में गुरु जी की सेवा, सेवा माने क्या है? वो जैसा चाहते हैं वैसा चलो, उससे वो प्रसन्न हो। इस प्रकार से विषम रूप से उनकी सेवा। इसके बाद में और जो दस इसका अतिरिक्त भी जो सब है दस, उसको पालन करते हुए चलेंगे और भजन करते चलेंगे तो अनर्थ निवृत्ति होगी। फिर निष्ठा, रुचि, आसक्ति और भाव है। भाव परिपक्व होने पर भाव में ही साधन सब कुछ बनेगा, और जैसा साधन हम करेंगे और जैसा वैसा ही भाव होगा, वैसे भी सिद्धि भी वैसे ही। हम साधन की स्थिति में जैसी भावना अपनी बनाएंगे, जैसी हमारी भावना रहे, और उसी समय में मूड ये बना दिया, भावना ये बनाई कि हमको ये चीज चाहिए, और ठीक उसी रूप में हम चलेंगे तो सिद्धि बहुत ही तात्पर्यशी वैसे ही सिद्धि हो। अभी हम लोग भावस्था में भी नहीं, अभी साधन जिसको कहते साधन में भी नहीं, अभी साधन में भी नहीं। साधक बिल्व मंगल को कहा गया तो समझो जो वो साधन कैसे। इसलिए हम बहुत अभी निम्न स्थिति में हैं। हो सकता है कि कोई इसमें हो, किंतु उसके अधिकारी बहुत कम है। हो सकते हैं अधिकारी, ऐसा नहीं जगत में अधिकारी है ही नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, किंतु उसके अधिकारी बहुत कम। वहीं पर सब कुछ ठीक हुआ। अब ये जो हमने कल तक जो बताया वो सब है सिद्ध भाव, सिद्ध अथवा साधक। उसी के अनुरूप यहाँ पर बैठ करके साधक इनकी जैसा चिंता करेगा, जो कैसे मथुरा की नागरियां कैसे चिंता कर रही हैं कृष्ण के समय, वैसे ही भावना चिंतन को साधक सिद्ध रूपे ने यह भी बतलाया था उसको। अब वो धीरे 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 वस्तु सिद्धि की तरफ में चल रहा है, अतः तो उसका भाव और प्रेम में के ऊपर रूप में पर्यवसित होने जा रहा है। यह प्रेम दो प्रकार का है, पहले होगा विप्रलंब और दूसरा है संभोग माने मिलन। हम साधकों के लिए भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं इस विप्रलंब रस में ही पूर्वराग और दूर प्रवास भजन कार्य के लिए साधकों के लिए विशेष उपयोगी है और नहीं। अब इस चीज को समझने के लिए साधकों के लिए जो रागानुगी साधक हैं उनके लिए विप्रलंब भाव से
दूर प्रवास जो
पूर्व प्रवास मान नहीं
मातृ विरह
मैं बतला रहा हूं, मान और प्रेम वैचित्र्य ये नहीं, चार प्रकार से विप्रलंब माने विरह होता है। चार प्रकार से, एक तो पूर्व राग में, एक मान में, एक प्रेम वैचित्र्य में और एक प्रवास। प्रवास भी बहुत प्रकार के हैं, एक सन्निकट प्रवास और एक सुदूर प्रवास। मान भी बहुत तरह के हैं, सहेतु अहेतु इत्यादि। इसलिए ये सब बहुत प्रकार के हैं, इनमें से मान साधक को नहीं होगा, साधक को मान नहीं होगा। इस वो किसको होगा? जिसको कृष्ण मिले हैं, कृष्ण से अत्यंत प्रेम है, उन लोगों को मान हो सकता है, इसलिए वो संभव है। और दूसरा प्रेम वैचित्र जो है वो भी सहज संभव। प्रेम वैचित्र कब होता है? प्रेम की बहुत ऊंची स्थिति पर होता है, इसलिए उसका भी साधन इन लोगों के लिए संभव है, वो भी मिलन में ही होता है।
मिलन और विरह वश में भी, किंतु उसमें मिलन भी होता है प्रेम बच्चे, इसलिए वो भी संभव है। इसलिए दोनों लोगों के अनुगत्य में, या तो पूर्वराग वाले भक्तों के अनुगत्य में अथवा दूर प्रवास वाले जो भक्त है जिनको विरह होता है, उन लोगों के अनुगत्य में भजन करना लाभदायक, क्योंकि कृष्ण तो मिले नहीं, अभी हम लोगों को दिखाई भी नहीं पड़े, कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों के लिए ऐसा ही, हमको मिले नहीं। क्यों नहीं मिले? अभी साधन हम लोगों का ऐसा नहीं है। तो ये तो उन लोगों के लिए जो भावुक भक्त हैं, भावावस्था में हैं, अब वो सप्तम सोपान में जा रहे हैं प्रेम में, अर्थात वो जा रहे हैं विप्रलम्बर रूप में। तो उनमें भी ये सबका बतलाएंगे क्रम 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 से। पहले ये बतला रहे हैं सिद्धि जो होती है भक्तों की, भाव भाव भक्तों की, वो सिद्धि का अंतर लक्षण, अंतर लक्षण साध भक्ति का अंतर लक्षण क्या है? हृदय द्रवित होना और उनका विरह की अनुभूति होना। हम भजन कर रहे हैं, नारद जी को भगवान का दर्शन कब मिला? जब नारद जी की ऐसी अवस्था हुई, ये छटपट करने लगे, अब प्राण का वियोग होने लगा, अम्बरे उस स्थिति। बिल्ल मंगल को भगवान का दर्शन कब मिला? जब उत्कंठा एकदम गले तक आ गई, अमर रहने लग गए, तो भगवान ने क्षणिक दर्शन दिया, वो भी क्षणिक दर्शन दिया, इसके बाद और उत्कंठा बढ़ा दी, हृदय में आग लगा दी, और तब फिर उस अंतिम दशा में जा करके शरीर को त्याग कर दिया, मन बुद्धि अहंकार चित्त को भी त्याग कर दिया, और फिर ब्रज में कहीं जन्म लेकर के, और तब फिर उसमें इस शरीर के द्वारा उसका साधन होना कठिन है, वो नहीं होगा। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी ने एक श्लोक वो दिया, जुगायितम निमिषेन चक्षुषा प्राप्तिशायितुम शून्यं जगत सर्वं गोविंद विरहेण। ये सप्तम श्लोक है शिक्षास्त्र। पहले इसके पहले का श्लोक है, नैनं गलदाश्रुधारया पदनं गदगदरुद्धया गिरा कुलकर्णिचितं वपुः कदा त्वनाम ग्रहणे भविष्यति। महाप्रभु जी प्रार्थना कर रहे हैं उसमें भावावस्था में कि कब हम हरि नाम लेंगे, कृष्ण नाम लेंगे, जगन्नाथ जी का नाम लेंगे, उस समय गदगद होकर के वाणी ऐसी हो जाएगी जो कृष्ण नाम पूर्ण उच्चारण नहीं कर सकते, गदगद एकदम ज ज ग ग कहने त्रि त्रि करने लग जाएंगे, कृष्ण नाम आएगा नहीं, ऐसी वाणी होगी। नैनं गलत अश्रु धारया, आंखों से अश्रु धारा प्रवाहित, रुकेगी नहीं, जहां नाम लिया आरंभ किया और बस होने लगी। जब तक ऐसी स्थिति नहीं आती है तब तक सोचो ये हमारे अंदर में अपराध बहुत है, कृष्ण नाम बीज दहे ना करें, प्रभु नमा भार सदाई नमा अपराध, ये सब जानवे भाई कृष्ण भक्ति बात, ये सब कृष्ण की बाधाएं हैं, कृष्ण भजन। जब तक चित्त द्रवित नहीं होता तदश्मशारम देवते, ये पहले श्लोक में बताया गया, हृदय हमारा पत्थर है इसलिए नहीं होता। कृष्ण नाम इतना मधु, इतना चित्त को द्रवित करने वाला है, जरूर करेगा ही। महाप्रभु के भक्त लोग कोई भी, रूप सनातन जी, हरिदास ठाकुर जी, अद्वैताचार्य जी और जितने थे, उन्होंने भालू बाघ को भी नाम लिया और वो लोग भी रोने लग गए। इन्हें नरोत्तम ठाकुर जी कहते हैं, पशु पाछी झुरे पाशा न बिदरे सुन जारी, किंतु मन प्रशांतो गलिलंग, हम उस कीर्तन को गाते हैं, पशु रोने लगे, पक्षी रोने लगे, बाघ सिंह को भी रुला दिया महाप्रभु जी, और भी हाथ जोड़ करके ऐसे पशु पक्षी भी कृष्ण कृष्ण कहने लगे। किंतु हम लोगों का मन इतना कठोर है कि हम चित्त द्रवित नहीं होता है। आप लोग सभी लोग अनुभव करेंगे, इतना करते हैं तभी होता नहीं, और यदि चित्त द्रवित होगा तब विषय संसार में कोई आसक्ति नहीं रह जाएगी। किंतु हम भरपूर हमारी आसक्ति, चाहे कोई त्यागी हो चाहे कोई भी, इसलिए चित्त द्रवित नहीं होना ये उसका लक्षण है। ये नाम हमारा शुद्ध नहीं हो रहा है, इसका कारण वही बतलाया। सबसे पहले जो बतलाया, क्या बतलाया? गुरवे सर्वम दद्यात्, ये नहीं, उनकी सेवा नहीं, अपनी सब कुछ दिया, स्वतंत्रता नहीं दिया। देना सब सहज है, रुपया पैसा दे दिया, घर छोड़ दिया, किंतु अपनी स्वतंत्रता ये गुरु जी को देना, ये बड़ा भारी बात। रुपया पैसा सहज में दिया जाएगा और सब चीजें हो जाएगी, किंतु मन की स्वतंत्रता ये कठिन। इन सब कारणों से अपराध हो जाता है, अवज्ञा हो जाती है, जो कल बतलाया था ना, गुरु अवज्ञा हो जाती है, देह में आत्मबुद्धि हो जाती है, और सबसे अधिक ये आत्मदेहात्म बुद्धि ये कब जाएगी? जब सर्व हम दे देंगे तब, तो सब देते नहीं, इन बातों पर हम विचार नहीं करते, और भजन तो करते हैं कुछ कुछ, कुछ कुछ नाम भी करते हैं। इसलिए कहते हैं कि नाम करने में हमारा चित्त द्रवित नहीं होता। नैनम गलदाश्रु धारया बदनं गदगदरुद्धया गया कुलकर निचितं बपुः कदा तव नाम ग्रहणे। कब होगा महाप्रभु का, उसके बाद में तब इसका ये श्लोक आता है, युगायुतं निमिषेण चक्षुषा प्राप्रिशायितुं सुन्नाइ जगत सर्वं गोविन्द विरहेण मे। युगाय महाप्रभु जी का, महाप्रभु जी के आने के पहले बहुत से भगवत अवतार हो गए, बहुत से आचार्य हो गए, किंतु महाप्रभु से पहले भगवान किसको कहा जाता था? ऐश्वर्यमयी भक्ति है उसके जो उपास्य हैं उनको कहा जाता था भगवान। ऐश्वर्य ही भगवत्ता का उस समय सार समझा जाता था। क्या? भगवान नारायण कैसे हैं? सर ऐश्वर्य पूर्ण है। द्वारकाधीश कृष्ण भगवान है। क्यों? कौरवों पांडवों के युद्ध में इधर उधर जितने से राक्षसों को मारा, पृथ्वी का भार हल्का किया, ये मनुष्य के द्वारा कभी संभव नहीं। रामचंद्र जी भगवान है। क्यों? बंदरों के द्वारा पुल बंधा कर और उस पर में जाकर के रावण दशकंदर जैसे वीरों को सब लोगों को समाप्त कर दिया। कितने दिन में? थोड़े से दिनों में समाप्त कर दिया, 90 दिन का युद्ध हुआ। और कृष्ण भारत युद्ध में 18 दिन में ही सब खत्म कर दिया। अद्भुत अद्भुत कार्य किए, इसी को भगवान कहते। किंतु चैतन्य महाप्रभु जब आए तो उन्होंने कहा माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। महाप्रभु जी ने बताया, इसके पहले कोई नहीं बतलाया था, न कोई आचरण किया था, बस जानते थे यही कि भगवान अघटन घटन अलौकिक शक्ति पर आए और अलौकिक कार्य कर सकते, बस यही भगवान, जो ये नहीं कर सकते भगवान, ऐसे भगवान को दास्य रूप में दास्य भाव से भजन करना चाहिए। किंतु चैतन्य महाप्रभु जी कैसे हैं? उनकी कृपा के अभी भगवत्ता का, भगवत्ता माधुर्य ही भगवत्ता का सार है। जब कृष्ण षड़ैश्वर्य को अपना गुप्त रख करके या ठग करके नर्वत लीला इत्यादि में अपने प्रेम को प्रकाशित करते हैं और प्रेम के द्वारा प्राप्त होते हैं, ये भगवत्ता का सार। यशोदा माँ जी उनको बांध रही हैं और वो डर के मारे रो रहे हैं, आंखों से अश्रु धारा भगवान को आ रही है, भक्त को नहीं। ऐश्वर्य वाले भक्तों में भक्तों को भी भक्तों को आता था आंसु, और इधर किसको आंसू आ रहा है? भगवान को ही आंसू आ रहा है डर के मारे। ये माधुर्य का सार। और दूसरे में हम देखते हैं जमुना जामुन स्तोत्र इत्यादि में भक्त लोग गिड़गिड़ा रहे हैं, उनके आंखों से दैन्य से आंसू आ रहे हैं। इसलिए दोनों में ये महाप्रभु के कृपा हुए बिना ये समझा नहीं जा सकता। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर जी के पहले ये सब महाप्रभु जी से पहले ये सब विचार कहीं था विश्व ब्रह्मांड में? कहीं नहीं था। होने पर भी उसका आविष्कार नहीं।
भागवत तो पहले भी है, परंतु किसी ने
आविष्कार नहीं किया। भागवत है, ये सब चीजें इसी में है, किंतु आविष्कार नहीं किया। महाप्रभु के बाद ही स्वर्ग दामोदर राय रामानंद जी और ये रूप गोस्वामी इत्यादि जिन लोगों ने सब और इसका प्रचार किया। पहले कोई साहस ही नहीं कर सकता था कि ऐसी ऐसी सब बातें करें। ये कृष्ण यशोदा के डर से रोते हैं तो ये भगवान क्या हुए? अच्छा, तब रोते हैं किस लिए? उन्होंने अभिनय किया, बस ये कह देंगे, इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। सचमुच में वो रो देंगे, ये भक्ति ऐसी नहीं पूछ सकती। इसलिए चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है। महाप्रभु जी की कृपा से हम लोग वृंदावन को जाएं, महाप्रभु जी की कृपा ही से हम लोग रस क्या चीज है ये कुछ सुनने में आया। महाप्रभु जी की कृपा से राधिका जी और कृष्ण क्या हैं, वो हलादनी शक्ति कैसे हैं, वो सब कुछ आया सुनने में। पहले लोग कृष्ण का नाम लेते थे रुक्मिणी सप्तभामा के साथ में, आज से 500 वर्ष पहले ये चीजें नहीं थी। महाप्रभु जी के समय में भी महाप्रभु जी के इन विचारों का प्रतिवाद किया कुछ लोगों ने, रुक्मिणी और सप्तभामा ही उनके साथ में रहनी चाहिए, राधा जी से तो उनका कोई संबंध नहीं, किंतु महाप्रभु जी और उनके परिकरों ने इस चीज को। इसलिए महाप्रभु के जो 8 श्लोक हैं, एक एक में दिया, जाम मैंने एक एक दिया है, ये 7-5 श्लोक 7 जाम में दिया है, प्रेम अब आरंभ रहा है। इसलिए साधन करके ये सब चीजें यदि नहीं हमारी आई तो फिर क्या हुआ, जीवन व्यर्थ। इसलिए हम लोगों का साधन भजन महाप्रभु जी के अनुरूप चलना चाहिए, उनके परिपरों के साथ। जब ये आए ना महाप्रभु जी के गोविंद जी, गोविंद है कैसे शिष्य तो है उनके गुरु जी के, किंतु इनके पास रखे कैसे सेवा करते थे, छाया की भांति करते थे। यहाँ तक कि स्वरूप दामोदर राय रामानंद का महाप्रभु जी से मिलना उनको कष्टकर प्रतीत होता था, वो नहीं चाहते थे कि महाप्रभु। जगदानंद जी अच्छे लगते थे, जगदानंद से बड़ी उनकी प्रीति थी, कहते जगदानंद पंडित जी आप यहाँ रहे तो ठीक है, क्यों महाप्रभु जी के लिए तिल लगवाएंगे, खाट पलंग लगवा देंगे, गद्दा लगा देंगे, ये उनको अच्छा लगता था। और स्वरूप दामोदर नहीं, किंतु स्वरूप दामोदर की सेवा और रामानंद की सेवा बहुत उन्नत। इसलिए कहते हैं भाई देखो भजन करो तो ऐसा ही साधन करना पड़ेगा, 1-2 पैसे के साधन से नहीं चलेगा। इसलिए सबसे पहले सब कुछ अपनी स्वतंत्रता वहां दो सेवा करो, उनके अनुसार में ऐसे भक्तों के आश्रय में जैसा वो चले हैं ना, जैसे रूप गोस्वामी चले हैं वैसे जीव गोस्वामी जी चले, जैसे रूप गोस्वामी चल रहे हैं हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी क्या करते हैं, एकदम एक एक शब्द का एक एक बात का उनको लेकर के चल रहे हैं, ऐसे ही होना है। जीव गोस्वामी ने जैसा कहा हमारे श्यामानंद प्रभु नरोत्तम ठाकुर
श्रीनिवास
ठीक वैसे ही चले, ऐसे हम लोग भी साधन भजन करें। रुपए पैसे के लिए हम लोग नहीं आए, सम्मान के लिए नहीं आए हैं, ये समझो। हम लोग और किसी चीज के लिए छोड़ करके यहाँ नहीं आए, इस चीज के लिए आए हैं। अंदर तक थोड़ा सा दो भी इस जीवन में हो जाए तो आगे के जीवन हमारे सुखद है, इसलिए इन चीजों को समझ करके वैसा ही साधन भजन करो। कोई भी साधन भजन हम करते हैं ना, तो इससे इस विचार करो, हमारे इस साधन भजन से हमारे गुरु या हमारे शिक्षा गुरु या वैष्णव लोग प्रसन्न हैं या नहीं, समझना चाहिए कि नहीं। यदि ऐसा नहीं विचार करता तो क्या है, स्वतंत्रता आ गई। इसलिए सब समय ऐसा ही विचार करके चलने की चेष्टा करनी चाहिए, ये उनके चरण चरणों का आश्रय से हम लोग वैसा ही भजन कर सकते। तब जाकर के महाप्रभु जी की ये चीजें समझ में कुछ आएगी, आपने तो नहीं आएगी, इसीलिए हम लोग आए हैं, विशेष करके महाप्रभु जी के संप्रदाय में आए हैं इन चीजों को समझने के। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, पहले ही इन्होंने दिया शिक्षा स्तर का साथ पास लोग जुगाई तम निमिषे चक्षुषा प्रावृषाई तुम निमेश जुगायितम जुगायितम निमिषेन जुगायितम निमिषेन माने क्या,
निमेश युग के समान व्यतीत होता,
एक निमेश युग के समान व्यतीत होता है। इसलिए अभी तक कृष्ण का दर्शन नहीं हुआ जी से, अच्छा अब वहां पर चले उज्ज्वल नीलमणि में, देखे ये किस चीज का लक्षण है। कल हमने बतलाया था ना निमेश कल्पता कल्प खनत्व और खन कल्प, ये दो ये किस चीज का लक्षण बतलाया था,
इसमें विरह में और मिलन में,
तो कौन स्थिति में, रूढ़ भाव में कल बतलाया था। रूढ़ भाव कब होता है, जब भाव से अनुभाव, उससे राग अनुराग महाभाव और रूप, ये उस स्थिति का वर्णन है। जब प्रलंब में जब चिंतन करेगा भक्त, तो उन लोगों का चिंतन करेगा जिनका रूढ़ भाव हो गया है उसका स्मरण, भाव अवस्था में किसका करेगा जिसको प्रेम हो गया है, और ये लोग इसका चिंतन करेंगे जिसके प्रति विशेष लोभ हो गया है उन लोगों के प्रति जिनको ऐसा भाव हुआ। महाप्रभु जी में कौन सा भाव है, किसका भी नहीं कर रहे हैं, किशोरी जी का ना, श्रीमती राधिका जी के भावों का ये आस्वादन, ये उनका भाव लेकर के और उनकी अंग कांति राधा भाव दूति सुबलितम नवमी, इसलिए ये उस रूप में कर रहे हैं, रो रहे हैं। युग आयु तक उनका एक युग भी, एक निमेश भी, आंखों का पलक भरना भी एक युग। हमको कभी कभी मान लिया कि कोई काम करते हैं, किसी से मिलना होता है ना, किसी से मिलना होता है, प्रतीक्षा हम कर रहे होते हैं, तो उस समय समय नहीं बीतना चाहता, उस समय एक मिनट भी एक घंटा दो घंटा चार घंटा होने लगता है। और जब किसी प्रिय व्यक्ति से बातचीत करने लगते हैं तो ऐसा मालूम पड़ता है जैसे एक घंटा युग की, तो हम अभी बात नहीं करें, युग की बात होगी उस अवस्था में ही, जब युग जब विशेष प्रेम होगा रूढ़ अवस्था आएगी, तो उन्हीं गोपियों की ये बातें कह रहे हैं। चक्षुषा प्रावृषा जैसे भादों के महीने में वर्षा होती है, उसी प्रकार से आंखों से निरंतर वर्षा होती है। किस लिए, विरह में गोविंद के विरह में अवस्था, उनके लिए इतना विरह होगा कृष्ण के लिए। सुन नयन जगत सर्वम, जगत माने क्या, यहाँ पर समस्त जगत शून्य दिख पड़ेगा, माने क्या, हमारे जितने प्रेमी हमारे बंधु बांधव इष्ट मित्र पुता पिता पत्नी भाई बंधु सब कोई भी नहीं दिख पड़ेगा उनके विरह में। सुन्याय जगत सर्वम गोविंद जगत, हे गोविंद, गोविंद की विरह में हमारी अब ऐसी कब दशा होगी, ये कह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु जी कह रहे हैं उद्वेगे विवश ना जाए खन हैदी गोस्वामी उद्वेग में अब उनका समय नहीं बीतता एक क्षण भी जू के समान बीतने लगता है कृष्ण के विरह ये जब साधन करते 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 अंततः उस अवस्था में पहुंचेंगे अनर्थ निवृत्ति होने के बाद में अंततः रुचि हो जाएगी तब कुछ कुछ मालूम पड़ेगा या शक्ति हो जाएगी तो और कुछ मालूम पड़ेगा अभी नहीं मालूम पड़ता अभी तो हम लोग खा रहे हैं खेल रहे हैं कूद रहे हैं अभी बहुत समय है लिखने का पढ़ने का ये सब समय है अभी हमारा साधन क्या होना चाहिए साधन क्या होना चाहिए कृष्ण में आसक्ति प्रीति तो हम लोग क्या कर रहे हैं जब खूब अच्छी तरह से विचार करते हैं तो देखते हैं कि बहुत दूर से हम लोग साधन कर चुके हैं अभी इधर उधर क्यों अभी अनुभव करते हैं कि यदि कुछ अधिक पढ़ लिख जाएंगे तो उसको हम पढ़ेंगे पढ़ करके वैसा करेंगे यही तो सोचते हैं दूर से अभी संभव अभी और कोई भी साधन करते हैं अभी सोचते हैं पहले ये कर लें तो इसके बाद हरी कथाओं में ऐसे रुचि नहीं आती सुनने में भी रुचि नहीं आती सुनते हैं जानते हैं जैसे अच्छी बातें हो रही तो अभी नहीं हम जा सकते क्योंकि हम कुछ अपने विचार से कर रहे हैं इसलिए उनमें रुचि नहीं होती यही हमारा साधन है ये सुनना परीक्षित महाराज जी के समान ये होगा मान लें कि हम हरि नाम कर रहे हैं 100,000 हरि नाम करेंगे ऐसा सोच करके हम बैठ और नाम मन इधर जाता है ले आते हैं कभी चला जाता है तो जाएगा ही इधर उधर उसको ले आ रहे हैं कर मैं जब तक कि कम से कम तो 32 बार नहीं कर लूंगा अर्थात 32 मैंने 50,000 में तब तक मैं उठूंगा ऐसी प्रतिज्ञा करके बैठ गए और उसी समय में हमारे गुरु वैष्णव लोग भगवान की कथा कर रहे हैं ऐसी सब तो यदि हम वहां पर बैठे रह गए या निर्जन स्थान में हम भजन कर रहे हैं इसी निर्जन स्थान में तो वो अच्छा है ना वो अच्छा है कौन सा साधन क्या हुआ वो जो हम कर रहे हैं अनर्थग्रस्त अवस्था में साधन वो है भी कि नहीं है अभी संदेह है जैसे कहा ना भगवान का भजन करते हैं तो है कि नहीं है अभी संदेह है सिद्धि होगी कि नहीं होगी कोई ठीक नहीं किंतु भक्तों की सेवा में एकदम निश्चित है कि वो भक्ति मिलेगी ऐसे ही हम नाम करते हैं ठीक है नाम करना जरूरी है किंतु जहां पर ऐसी कथाएं हो जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं हम सोच नहीं सकते उन कथाओं के श्रवण से हमारी भक्ति आगे बढ़ जाएगी इसमें नहीं होगा किंतु इसमें कभी अवश्य संभावी है इसलिए साधनों में भी तारतम्य है अपने करने की अपेक्षा यदि वैष्णव कोई है ऐसे हमसे उन्नत जो यदि वो कुछ कर रहे हैं उसका सुनना उसका चिंतन करना ही हमारे लिए बहुत साधन है ऐसा विचार करके साधन भजन उस समय में हम लोगों को विरह अनुभूति होगी पहले तो गुरु जी के लिए होगा वैष्णव के लिए होगा तब तो भगवान के लिए पीछे अभी तो अनुभूति नहीं है उस प्रेम की किंतु जो बतला रहा है उसके लिए यदि विरह हो तो ये सचमुच में साधन कुछ आरंभ हुआ है इति पुण सार्विता विष्णु भक्ति सेन वाला यदि उनके लिए ही नहीं हुआ तो भगवान के लिए क्या होगा ये असंभव गोविंद जी अपने गुरु ईश्वरपुरी पाद जी के परलोक के बाद अप्रकट होने के बाद उनके उनसे कहा जब मैं आप कहाँ रहूँ क्या करूँ अरे भजन करो तो भजन तो मैं जानता नहीं तो अपने से उन्नत किसी वैष्णव के पास में रहो तो उन्होंने आप ही बताइए मैं कहाँ रहूँ किस वैष्णव के पास में रहने से हमारा भजन होगा मैं भजन नहीं जान तो उन्होंने क्या कहा पुरी में चले जाओ और श्री कृष्ण चैतन्य हैं उनके पास में रह करके भजन वहीं पर उनकी सेवा करो, वही से तुम्हारा मन। इसमें कोई संशय है जो भगवान को पाएंगे कि नहीं? यदि ऐसे लोगों का यदि मिल जाए संग, तो हम जो 10,000 वर्षों में जो साधन करेंगे उनके साथ में सेवा करने से वो ये सब साधन। इसीलिए बतलाया ऐसे भक्तों की चरण धूलि पद धूलि पद भक्त जल और इसीलिए तब वो सब पहले गुरु जी के प्रति वैष्णव के प्रति जो भगवान के प्रति ये भाव दिखलाते हैं हमको ले जाते हैं उनके प्रति ये विरह की अनुभूति होगी। गुरु जी की सेवा करने से वैसे ही सेवा भगवान के प्रति करेंगे, जो कुछ यहाँ करेंगे साधन में ठीक उसी सब उसी के अनुरूप में वो बढ़ते चले जाएंगे। तब वो ये भाव आएगा वर्षाय मेघ प्राय अश्रु वर्ष गोविंद विरह सुन्न हो गया। गोविंद के विरह में ये त्रिभुवन सन्न होगा, जैसे कि रघुनाथ जी कृष्ण के लिए नहीं कर रहे, राधा जी के लिए नहीं कहा, उसको समझने वाले विरले हैं, किसके लिए कहा? रूप के लिए, रूप गोस्वामी के लिए कहा। उसको तो सब दामोदर तो वहां से छूट करके आए थे, वहां पर पुरी में वहीं पर उनका विरह हुआ था, और उस विरह को नहीं सह सकने के कारण में ब्रज में आए, और यहाँ पर उस सनातन का एक आश्रय मिला, कुछ कुछ भूल रहे थे किंतु इधर में फिर उनको विरह। तो कहते हैं हमको वृंदावन वास की जरूरत नहीं, मुझको गोवर्धन वास की जरूरत नहीं, राधा कुंड की भी जरूरत नहीं, अप्राणों की भी जरूरत नहीं, जीवातु रस्य
जीवातु रहित
जीवातु रहित। ये उनके जीवातु कौन है? इसलिए व्याघ्रम तुंडायते सुंडायते महागुष्टम
गिरिंद्रम
अजगोरायते व्याघ्रम तुंडायते कुंडम
जीवातु
रहित। तो सुंडायतम गोष्टम महागोष्ठ, महागोष्ठ भी आज मेरे लिए शून्य हो रहा है, वृंदावन ही तो राधा कुंड से बढ़कर के कौन सा गोष्ठ होगा, और हम संसारी लोगों के लिए हमारा गोष्ठ जो ही है ये सब फीका लग शून्य लग। हम लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि नहीं? देखो गुरु के बिना कैसा कुछ शून्य लगता है कि नहीं, वैष्णव के बिना शून्य लगता है कि नहीं, जो रूप गोस्वामी के लिए उनको होता है। इसलिए प्रेम जितनी भी वृद्धि होगी इन वैष्णव के प्रति इनके प्रति ऐसा ही भाव आएगा। गदाधर पंडित जी महाप्रभु जी के लिए क्या किया सर, ये 2-4 दिनों 10 दिन में ही छोड़ ऐसे ही सब देखा जाता है। तो गोविंद गृह सुन्न ही डरते त्रिभुवन एकदम शून्य उनके लिए हो जाता। हम लोग को कितना क्या होता है भजन नहीं करने से हम लोग को कितना दुख होता है ये भी होना चाहिए। तुषा नले फोड़े जेनो ना जाए जीवन, तोषा नल पड़े माने एक थे कर्मकांडीय
कुमारिल
भट्ट, उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय के प्रधान अध्यापक को उनसे शिक्षा ली और उन्हीं को हरा दिया, बड़े दुखी हुए। बौद्ध धर्म को विनाश करना उनका प्रधान उद्देश्य था, इसलिए बौद्ध धर्म को जानने के लिए उसका खंडन कैसे करेंगे पहले उनको तो समझेंगे, इसलिए उसका खंडन करने के लिए बड़े विद्वान होते हुए वेदों के भी कुमारिल भट्ट वहाँ नालंदा विश्वविद्यालय में बच्चे बनकर के छोटी उम्र में इतने बड़े पंडित वो जाकर के अपना नाम लिखवाया और पढ़ने लगे। जब पूरा पाठ हो गया उनका अब तो समावर्तन करने वाले थे और उनको बड़ा लोग विश्वास करते थे बौद्ध लोग कि इतना बड़ा पंडित हमारे होल यूनिवर्सिटी में जहाँ पर कि हजारों लाखों लोग पढ़ते थे उसमें ये विशेष बुद्धि संपन्न लोग, इस पर वो लोग भरोसा कर रहे। और जब जाने का था कुछ दिन पहले ही उन्होंने वेदों की निंदा की तो इसके आंख से आंसू आ गए, छद्मवेश में था ये कोई जाने नहीं, किंतु आज वो प्रकट भाई अरे ये तो वेदों का ये समर्थक है। गुरु जी से जाकर के आइए तो वेदों की निंदा सुन करके हंसता नहीं है रोता है। तो गुरु जी ने बुलाया उसको, तुम क्यों रोता है? तो इसलिए रोया कि वेदों की अनर्थक निंदा आप क्यों कर रहे हैं, तो अनर्थक कैसे, वेद तो सब बेकार का है, उसमें कोई सत्य बात है ही नहीं है। दोनों में बातचीत तर्क वितर्क हुए और तर्क वितर्क से इसने उनको परास्त कर दिया अपने गुरु को। गुरु एकदम निरुत्तर हो गए। जब निरुत्तर हो गए तब अपने शिष्यों की तरफ में देखा, तो जैसे ये मैं तो हार तो गया, बात तो ठीक है किंतु जगत में कोई ना जाने, इसको मार डालना ही अच्छा है, इसलिए मारेंगे कैसे, उसके लिए भी कोई षड्यंत्र बनाया। षड्यंत्र करके कहा जैसे ये हार गया है, अच्छा देखो यदि वेद सत्य है तो इसको ऊपर से फेंक दो, ये बच जाए, मरेगा जरूर। वेदों में तो उन्होंने का विश्वास नहीं था। कहा जैसे इसको ऊपर छत पर ले जाओ, 120 मंजिल या कितनी मंजिल की इमारत थी नालंदा विश्वविद्यालय, उसमें विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा और बहुत बड़ा ये था, उसमें कितने हजार तो अध्यापक थे, विमान संघ वहाँ आया था चीन
चीन से,
तो वो वहाँ पर कहा जैसे उसको ऊपर ले जाओ, और यदि ये वहाँ से गिर करके बच जाएगा तो सोचो ये बच देखो, इसको पूछो तो वेद सत्य है कि क्या है, अब इसको गिरा रहे हैं। तो उसने कहा यदि वेद सत्य है तो मेरा कुछ भी ना हो, तो उसको ऊपर से फेंक दिया, तो जब बचेगा मर जाएगा, तो वहां नीचे गिरा तो उसका कुछ नहीं हुआ, केवल अंगुली जी थी कानी वो थोड़ी सी मुड़ गई, थोड़ी सी फ्रैक्चर हो गई, तो ऊपर से आए वो सब्जी से अब तो जरूर मर गया, यहाँ ने देखा जैसे कुछ नहीं हुआ, ये तो बच गया, ये तो बड़ा आश्चर्य की बात है, ये हाथ में केवल चोट लगी।